फाइल 17, उपन्यास दिल एक सादा कागज, पृष्ठ 172 से। और ये तो खुली बात है कि जब कोई बादलों पर चलता है तो उसके विचार भी बदलिया जाते हैं। जवाहर नगर ने नारायणगंज वालों में से कईयों के विचारों को बदलिया दिया था। कालीचरण पहले तो बाकायदा लेबर मिनिस्टर बना, फिर जब लेबर मिनिस्ट्री से बोर हो गया तो प्राइम मिनिस्टर बनने लगा। नारायणगंज और नवापुरा के शरीफ लोग ये तमाम बातें झेल जाते, पर उनकी समस्या ही और थी। अंगियों का इकलौता खानदान जवाहर नगर में खप गया था। 190 रुपया माहवार, यानी मौलवी अली अहमद आजिज से 40 रुपये माहवार ज्यादा। अब वो 4 आने माहवार या 1 रुपया माहवार पर घर घर जाकर झाड़ू देने या पाखाना साफ करने पर तैयार नहीं थे। दूसरी समस्या हज्जामों की थी। पहले तो हज्जाम अपनी किस्बतें उठाए दरवाजे दरवाजे जाया करते थे, हफ्ते में एक दिन घरों पर उस्तरे भी छोड़ आया करते थे, पर अब वो हेयर कटिंग सैलून्स खोलकर बैठ गए थे। बहुत दिनों तक शरीफ लोग बहुत परेशान रहे, पर फिर मरता क्या न करता, लोगों ने दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया। बस 3 आदमी दुकान पर नहीं जाते थे, ठाकुर साहब, मक्खन लाल और काली चरण। ठाकुर साहब यूं कि 1 हजामत के 5 रुपए देते थे, मक्खन लाल जी यूं कि वो नारायणगंज हज्जाम यूनियन के अध्यक्ष थे, और काली चरण यूं कि शारदा के जरिए बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ सुनवाई हो जाती थी। शारदा की वजह से काली चरण की अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। वो उसके बहाने हर डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता। उसने सर्टिफिकेटों का अच्छा खासा कारोबार चला रखा था। काली चरण के रास्ते में राम अवतार के सिवा और कोई कांटा नहीं था। राम अवतार अपनी धुन और अपनी लगन और अपनी मुंहफट ईमानदारी के कारण धीरे धीरे मजदूरों के दिलों में घर बनाने लगा था। और इसलिए जब काली चरण ने राम अवतार के दोस्त रफ्फन को माला सहगल के साथ देखा तो उसका माथा इतने जोर से ठनका कि उसकी ठनकन मक्खन लाल ने सुन ली। मैं तो कहता हूँ कि इस बागी आजमी का इलाज फौरन से पेस्तर ना किया गया तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी, कहिए तो उसके खिलाफ एक कविता झाड़ दियूं, काली चरण बड़े भरोसे से बोला। मक्खन लाल मुस्कुराए, तुम भाई बच्चा हो, वो तुम्हारी कविता ओविता से मार न खाए वाला है। वैसे तो यहीं से बैठे बैठे एक तो फोन घुमाए दियो तो बच्चा का पत्ता कट जाए। गुप्ता जी से तो अपनी गाढ़ी छनती है, अब भाई परसों की बात है, बोले। मक्खन लाल जी, आप तो कभी खिदमत का मौका ही नहीं देते, फ्लोर क्रॉस करके इधर आ जाइए तो मिनिस्टर विधौट पोर्टफोलियो तो बना ही देता हूँ। मिनिस्टर विधौट पोर्टफोलियो यानी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। मक्खन लाल जी ये भूल गए कि वो किसी आम सभा में नहीं है, बल्कि अकेले काली चरण से बातें कर रहे हैं। पर मैं साफ साफ बोला, गुप्ता जी मक्खन लाल को बिजारत की चटाईनी मत थमाओ, मक्खन लाल तो जनता का सेवक है। पर राम अवतार, अरे राम अवतार गया अपनी माँ के कानी काहे में, बागी ससुर बहुत बिलबिलाई हैं तो बगावत के केस में फंसा दूंगा। न रही है बांस न बजी है बांसुरी। एक तरफ हाजी रफी के लौंडे को उंगुलिया रहा, दूसरी तरफ माला को लेके घूम रहा। ऐसा आदमी का एक लायक है कि हम लोग ओके गांव का लड़कन के भविष्य का चौकीदार बनाए। मक्खन लाल ने पहली बात तो बिल्कुल गलत कही थी। रफ्फन तहजीबुल को हरगिज उंगलिया नहीं रहा था, पर उनकी दूसरी बात सही थी। वो माला के साथ घूम फिर जरूर रहा था। रफ्फन से मिलकर माला को अपनी पहली और आखिरी हार याद आ गई थी, और उस हार की याद से बचने का सिर्फ यही एक तरीका था कि वो रफ्फन को जीत ले। पर रफ्फन अपने किसी दोस्त की बहन से हारने पर तैयार नहीं था। ना वो रुकैया से हारा ना माला से, और उसे दोनों बार ना हारने की कीमत चुकानी पड़ी। कोई ऐसी बात नहीं थी कि रफ्फन उन लोगों में था जो पराई बहू बेटियों को अपनी बहू बेटी मानकर जीते हैं। उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं, जीवन की आधुनिक वास्तविकता मध्यम वर्गीय मूल्यों की बैसाखी नहीं लगाती। बदन का कंवारापन सौंदर्य की तौहीन है। सेक्स कोई गाली नहीं, पर उसमें एक फ्यूडल खराबी अब भी जी रही थी। दोस्त की बहन अपनी बहन होती है और अपनी बहन से इश्क नहीं लड़ाया जाता। रुकैया, शारदा, चौधरी, चंद्रशेखर, दो बहनें, दो दोस्त। वो गोल्डन बेयर या ला बोहिम जैसे रेस्तरां में माला के साथ घंटों बैठता। कभी जन्नत साथ होती, कभी जन्नत साथ न होती। ऊंचे नौकरी पेशा वर्ग वालों से मिलकर उसे बड़ी कोफ्त होती। ये इंजीनियर, ये चीफ अकाउंटेंट, ये प्लांट मैनेजर, ये डिप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर उसे पेट्रनाइज करते, उसकी खातिर साहित्य की बात करते, अपने टेक्निकल जार्गन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते। स्वतंत्रता के बाद जो नया नौकरी पेशा वर्ग उभरा है, वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझने लगा है, ड्राइंग रूम में किताबें सजाता है और साहित्यकारों को पैट्रनाइज करता है, शाम को महफिलें सजाता है, बीवियां और बेटियां विस्की के गिलास लेकर साथ बैठती हैं, और सार्त्र के फैटलिस्ट एप्टीट्यूड और ऑस्कर वाइल्ड की साडोमी पर बहस करती हैं, आधुनिक अमेरिकन लिटरेचर की बात करती हैं, इरविंग वेलेस, लियोन ओरिस, मारियो पूजो और गालिब पर सर धूनती हैं और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज या पोकर खेलती हैं। जो मिस या मिसेज नहीं आई हैं, उसके वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल का मजाक उड़ाती हैं और स्कैंडल्स के थान बुनती हैं। अपने समाज के अंदर ये जो एक नया समाज पैदा हो गया है, ये एक एंगल से बड़ा ट्रेजिक है और दूसरे एंगल से बिल्कुल नकली सफेद झूठ। मर्दों पर इंक्रीमेंट हासिल करने और एक दूसरे को काट कर तरक्की करने वाले की जिम्मेदारी है। कल्चर की जिम्मेदारी मिसों और मिसेजों पर है। जवाहर नगर की मिसों और मिसेजों की लीडर माला सहगल थी। जवाहर नगर की तमाम मिसों और मिसेजों में सबसे खूबसूरत भी वही थी। वही एक ऐसी थी जो चेज, अगाथा क्रिस्टी, मिकी स्प्लैन और अर्ल स्टैनली गार्डनर की किताबें नहीं पढ़ती थी और इसीलिए जवाहर नगर की पढ़ी लिखी बीए एमए पास औरतें उससे जलती थीं, पर यह भी चाहती थीं कि वो उसी के सर्किल में उठे बैठे ताकि बैकवर्ड ना कही जाएं। इन औरतों की ट्रेजेडी ये थी कि इनकी कमर से नीचे बंधी हुई साड़ियों और बेहद नीची नेकलाइन के ब्लाउजों और फीकी लिपस्टिक के बावजूद इनकी आत्माएं पुरानी थीं। ये अंदर से खूसट बुढ़ियाएं थीं और बूढ़ियों के इस घने जंगल में माला एक अकेली जवान लड़की थी। वो जिस किताब की तारीफ करती, वो किताब तड़ातड़ हर ड्राइंग रूम में आ जाती और हर ड्राइंग रूम वाली अपनी सहेली को खत लिखती कि उसने आज ही वो किताब खत्म की है। माला की राय बीसों खतों के जरिए बीसों जगह पहुंच जाती और इसीलिए जब रफ्फन को माला के साथ देखा गया तो उससे मिलना, उसे अपने यहाँ इनवाइट करना, उसकी कविताएं सुनना और ये बात करना जवाहर नगर के फैशन में दाखिल हो गया कि उर्दू के साथ सरकार बड़ा अन्याय कर रही है। इस नकली वातावरण में रफ्फन का दम घुटता था, पर वो जवाहर नगर का फैशन बन चुका था। अधेड़ मिसेजें अपने जवान ड्राइंग रूमों में उससे फ्लर्ट करती थीं। जवान मिसे उसे हथियाना चाहती थीं कि वो माला सहगल का बॉयफ्रेंड था। जवाहर नगर में माला बड़ी चीज थी, केवल इसलिए नहीं कि वो चीफ इंजीनियर की बेटी थी, बल्कि इसलिए भी कि वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की गर्लफ्रेंड थी। वो तरक्की दिलवा सकती थी, डिमोशन करवा सकती थी, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में तबादला करवा सकती थी। जवाहर नगर वाले और वालियां रफ्फन के जरिए माला पर कब्जा करना चाहते थे। वो हर शाम किसी न किसी ड्राइंग रूम में सजा दिया जाता और जब गई रात को वहां से निकलता तो तरह तरह के सेंटों की सुगंधें दूर तक उसके साथ चलती। अच्छी शराब, अच्छा खाना, कीमती क्रॉकरी और खरी चांदी या व्हाइट मेटल की कटलरी, मेजों पर कांटा छुरी, सब कुछ लगता, पर खाना हाथ से खाने वाला होता, बैगन का भुरता, कोरमा। कई घरों में अपना सेक्युलरिज्म साबित करने के लिए बीफ पकता और मिसेज उनके कान में कहती, बीफ है? वो गर्दन हिला देता, मेरे घर में तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, पर मैं इन बातों को नहीं मानती, मीट तो बीफ ही का होता है। बीफ का नाम सुनकर उसे उबकाई आने लगती। कर्नल साहब बीफ स्टेक बड़े शौक से खाया करते थे। अब्दुल समद खां बड़े जोरदार बीफ स्टेक बनाया भी करते थे, पर भाई जानू को बीफ पसंद नहीं था, इसलिए रफन को भी बीफ पसंद नहीं था। बगल में बैठी हुई मिसेज को भी बीफ पसंद नहीं था, पर वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बीफ खा रही थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे कासिल या बैकवर्ड या रिएक्शनरी समझे। जवाहर नगर में ब्रॉड माइंडेडनेस की एक दौड़ हो रही थी। बेल बॉटम, एलिफेंट्स ट्राउजर, जीन्स, हिपस्टर साड़ियाँ, ऊंची चोलियाँ, स्पोर्ट शर्ट, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, स्टीरियोफोनिक म्यूजिक, अली अकबर, रविशंकर, फैयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, मेहदी हसन। नूरजहां ने फैज की नज्म क्या मजे में गाई है, मुझसे अगली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, दुख जमाने में बहुत से हैं मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ड्राइंग रूम नूरजहां की आवाज से भर गया। रफन उदासी के एक अंधे कुएं में गिर गया। वो अध खुली आंखों से लोगों की तरफ देख रहा था, इंक्रीमेंटों, नौकरियों, ओहदों के परिवार, तनख्वाहों के गज से आदमी की बड़ाई नापने वाले लोग अपने चेहरे पर उदासी का नकाब डाले फैज की नज्म और नूर जहां की आवाज सुन रहे थे कि गालिब के बाद फैज ही सबसे बड़ा फैशन है। नूर जहां की आवाज फेड आउट हो गई और एक खटके से दूसरा संगीत शुरू हो गया। देख तो दिल की जां से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है, हिंदुस्तान में गजल गाने वाला ऐसा एक नहीं है, जी सिंह पॉइंट मैनेजर ने रफन से कहा। क्यों? माला बोली, बेगम अख्तर कहाँ गई? जी सिंह ने दांत निकाल दिए। जी सिंह को अपने दांत बहुत पसंद थे। जब वो पढ़ा करते थे तो उनके दांत बिना का टीथ बनकर देश में फैल गए थे। जो मैगजीन उठाइए जी सिंह के दांत मौजूद थे, तो वो अब भी अपने दांत दिखाया करते थे। कुंवारे थे और माला से टिप्स लड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें साहित्य और खासकर काव्य से पैदाइशी बैर था। साहित्य को फ्यूडल और अनसाइंटिफिक कहके वो साहित्य का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। ब्लू फिल्में देखकर और ब्लू साहित्य पढ़कर वो बड़े मजे में जी रहे थे कि जवाहरनगर में उनकी मुलाकात माला से हो गई और मजबूरन उन्हें साहित्य में दिलचस्पी लेनी पड़ी। जवाहर नगर में बहुत दिनों तक इस बात पर बहस चलती रही कि सिंह तो समझे, पर ये जी क्या है? जितने मुंह थे उतनी ही या उससे भी कुछ ज्यादा बातें थीं। गोपाल सिंह, गणेश प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद सिंह, आखिर माला ने जी कड़ा करके पूछ ही लिया बिना का टीथ निकल आए। मेरा कोई भाई बचता नहीं था, जी सिंह ने कहा, 3 महीने के अंदर सब मर जाते, तो एक अनयूजुअल नाम रखा गया और मैं बच गया। वो तो मैं देख रही हूँ, पर नाम क्या है आपका? माला मुस्कुरा दी, जी फॉर गोवर्धन, जी सिंह ने इधर उधर देखते हुए कहा। मजे की बात यह है कि जी सिंह के माता पिता एथेस्ट मशहूर थे। हिंदुस्तान और उसकी रस्मों और उसके सुपरस्टिशंस पर जी खोल कर हंसा करते थे, पर जब ताबड़तोड़ 10 लड़के मर गए तो ये एथेस्ट माता पिता खुद एक सुपरस्टिशन का शिकार हो गए। माला खिलखिला के हंस पड़ी। नाम तो बड़ा अप्रोप्रिएट है, किसी लड़की ने जलकर कहा। वैसे जी सिंह भी बुरा या अधूरा नाम नहीं है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए तो यस सिंह बनेगा। अब सिंह होने या ना होने पर तो आपका कोई अख्तियार नहीं, और मिस्टर यस सर तो आप यूं भी हैं, मगर मुकेश तो बिल्कुल बेसुरा है, माला कह रही थी। लता की आवाज में डेप्थ नहीं है। हिंदी फिल्मी म्यूजिक सुनना बड़ी जिहालत की बात है, शेयर बैड टेस्ट। क्यों रफन भाई? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने रफन की तरफ देखा। उसे रफन से सख्त नफरत थी। साला शायर की दुम, इस हरामजादी को इस बहनचोद में जाने क्या दिखाई दिया? अरे भाई बागी साहब, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने मुस्कुराकर रफन को आवाज दी। रफन उस वक्त जन्नत को कोई लतीफा सुना रहा था। जन्नत हंस पड़ी। माला को लगा कि जन्नत उसी पर हंसी है। उसके सारे बदन में एक कड़वाहट दौड़ गई। तुम मुझसे कुछ कह रही थी? रफन ने मुड़कर माला से पूछा। ये कह रही थी कि हिंदी फिल्मों का म्यूजिक। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को इससे ज्यादा कहने का मौका न मिला। माला ने बात लपक ली। मुझे जो कहना है वो मैं खुद कह लूंगी, आप तकलीफ न उठाएं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर माला के लहजे के पहाड़ तले कुचल गया। एक पालतू कुत्ते की तरह डांट सुनकर दुम हिलाने लगा। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रफन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रफन को उसकी मुस्कुराहट बहुत गंदी लगी। म्यूजिक तो म्यूजिक होता है मिस सहगल, जी सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। वो अच्छा या बुरा होता है, फिल्मी या गैर फिल्मी नहीं होता। आपसे किसने कह दिया? माला ने तड़ से कहा। और देखिए, सुनी सुनाई बातें मान न लिया कीजिए। लोग हंस पड़े। सबसे जोरदार कह कहा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने लगाया और जी सिंह बेचारा ढेर हो गया। ये लोग और ये पार्टियां दीमक की तरह रफन को चाटे जा रही थीं। वो जानता था कि इन लोगों का साहित्य प्रेम और प्रगतिशीलता फैशन है, आदर्श नहीं है, मनोरंजन का और कोई साधन नहीं। वही लोग घूम फिर कर उन्हीं ड्राइंग रूमों, उन्हीं दो रेस्तराओं और उसी एक क्लब में मिलते हैं। वही कल परसों और पिछले महीने वाली बातें दोहराते हैं, स्कैंडल्स पर फुट नोट लगाते हैं और भूमिकाएं गढ़ते हैं। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साहित्य, सीमेंट का भाव, फ्लिंट, कारपेट एरिया और माला सहगल। जिंदगी बहुत बोरिंग थी, इसलिए रफन का दम उन्हें गनीमत लगता था और रफन से मिलकर उनके सोशलिस्ट ईगो को एक तरह की तकसीन भी होती थी। कहाँ एक मामूली सा स्कूल मास्टर और कहाँ ये ड्राइंग रूम जिसमें गुजराल, अमृता शेरगिल और हुसैन के ओरिजिनल टंगे हुए हैं। रफन ये सब देखता था, ये सब समझता था, पर वो इन्हें झेल रहा था क्योंकि इन ड्राइंग रूमों में बैठकर जन्नत ये भूल जाया करती थी कि उसका मियाँ एक स्कूल मास्टर है। रफन उन ड्राइंग रूमों में गुजरने वाले घंटे दो घंटे के लिए मास्टर का खोल उतार कर वो वाला बागी आजमी बन जाया करता था जिससे जन्नत प्यार करती थी, जिसके धोखे में जन्नत ने एक स्कूल मास्टर से शादी कर ली थी। स्कूल मास्टर, कभी कभी वो खुद ये सोचकर हैरान हो जाया करता था कि वो स्कूल टीचर क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। वो किसी स्कूल में टीचरी करने की जगह किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो सकता था, IAS में जा सकता था, अपने बाप की जगह वकालत करके एक और जैदी विला बनवा सकता था, अब्दुस्समद खां जैसा एक बावर्ची रख सकता था, अपने खानदान के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो किसी बड़ी बिजनेस फर्म में कोई नौकरी करके मुफ्त का घर, मुफ्त की कार और मुफ्त के नौकर चाकर पा सकता था, इनकम टैक्स दबाने के नए नए तरीके सोच सकता था, पर उसने ये सब नहीं किया। वो इनमें से कुछ नहीं बना, स्कूल टीचर बन गया। मौलवी अली अहमद आजिज, बाबू जगदम्बा प्रसाद, एक कमानी का चश्मा, थैले जैसा हाफ पैंट, टाट का झूला लटकाए हुए हाथ, अपने शागिर्दों से उधार मांगने वाली जबान, स्कूल के मैनेजर की पूजा करने वाला भक्त, प्रोविडेंट फंड के तीन पायों वाली पीढ़ी पर बैठा हुआ भविष्य, वर्तमान की कसौटी पर खोटा साबित होने वाला व्यक्तित्व। रफन शायद अपने आप को इस आग में जलाना चाहता था। शायद वो अपने पिता और भाई जानू के उन सपनों को जलील करना चाहता था जो उन्होंने उसके बारे में देखे थे और जिन्हें यहाँ छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए थे, इज्जत की जिंदगी और मौत की तलाश में। पाकिस्तान, 4.5 अक्षरों का एक शब्द पाकिस्तान, जिसमें जैदी विला की वीरानी आबाद है। अब खराबा हुआ जहानाबाद, वरना हर हर कदम पे यहाँ घर था। दिल की वीरानी का क्या मजकूर हो, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया। दिल्ली के न थे कुए और आके मुसव्वर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। शहरों का मर्सिया लिखना शायद उर्दू शायरी की तकदीर है, रफन सोचता, कि जो वो भी मीर सौदा या गालिब जैसा बड़ा शायर होता तो मोहल्ला काजी टोले का मरसिया ज़रूर लिखता। जैदी विला की मौत कई मरसियों का बोझ उठा सकती है, पर उसकी शायरी दिल्ली, तेलंगाना, मॉस्को, हनोई, पीकिंग, लुआम्बा, वॉशिंगटन, स्टालिन, कैनेडी, लूथर किंग, नासिर और नेहरू में उलझी हुई थी। दिल्ली के मुकाबले में जैदी विला की हैसियत ही क्या। दिल्ली जो उससे दूर एक शहर था, जैदी विला जो उसके दिल में बना हुआ एक शहर था, जिसकी दीवारें उसे जबानी याद थीं, जिसे खोने का दुख जन्नत को खोने के दुख से कहीं बड़ा था। राजनीति बड़ी खुदगर्ज और बेमुरव्वत होती है। क्या सोच रहे हो यार, राम अवतार की आवाज सुनकर वो जाग पड़ा। वो भूल ही गया था कि वो अपने घर में राम अवतार और चंद्रशेखर के साथ चाय पी रहा है। जाना जाता है कि इस राह से लश्कर गुजरा, चंद्रशेखर बोला। यार मीर के यहाँ दिल्ली और दिल का चक्कर खूब है, रफन ने कहा। पता ही नहीं चलता कि दिल की बात कहाँ खत्म हुई और दिल्ली की बात कहाँ से शुरू हो गई। बात अच्छी टाली, राम अवतार बोला। चाय वाय जल्दी खत्म कीजिए आप लोग, शारदा बोली। मुझे रफन भाई को लेकर राइटर्स क्लब की मीटिंग में जाना है। टालो यार, चंद्रशेखर बोला। वो शंकर दयाल महालीचड़ आदमी है, कम से कम 50 फुलस्केप की कहानी पढ़ेगा। नहीं यार, रफन ने कहा, जाना तो पड़ेगा। क्यों, राम अवतार ने पूछा। क्योंकि कुछ यादें हैं उन शहरों की जिनमें सोफों पर छलका है जैसे कहवा, मैं जिनमें हाथों से छूटा, गिरा जमीन पर टूटा जैसे एक कहवे का प्याला। मेरी शख्सियत के दो एक टुकड़े शायद उन कमरों की खिड़की के नीचे जो फूलों के थाले हैं उनमें अब भी पड़े हुए हों। किसके शेर हैं, चंद्रशेखर ने पूछा, और उसकी बुझी बुझी आंखों में एक रोशनी जाग पड़ी और पलकों की चौखट से कंधा लगाकर खड़ी हो गई और रफन की तरफ देखने लगी। शेर अच्छा हो तो सबका होता है, रफन ने कहा, बुरा हो तो किसी का नहीं होता। सैयद रफअत अली बागी आजमी की आंख में यादों की कंकरी पड़ गई। उसने जन्नत की तरफ देखा। जन्नत के नाखूनों पर चढ़ी हुई फीकी गुलाबी पॉलिश मैली हो चुकी थी। सवेरे के संवारे हुए बाल उलझे हुए थे। पलंग के नीचे पड़ा हुआ उसके चप्पल का दाहिना अंगूठा कई दिनों से निकला हुआ था। पलंग पर रखी हुई ट्रे में उंगते हुए शक्करदान का कुंडा टूटा हुआ था। जन्नत, जैदी विला की बहू जन्नत, कर्नल जैदी के चहीते पोते की बीवी जन्नत, सैयद अली रफअत बागी आजमी MABT मशहूर शायर की प्रेमिका। एक जन्नत के कितने रूप हैं आखिर, और ये सामने बैठी हुई जन्नत कौन सी जन्नत है? जन्नत के इस हाल पर किसे शर्मिंदा होना चाहिए? रफन इस तरह के सवालों से हमेशा कतरा जाया करता। ऐसे सवालों में उलझने से फायदा क्या जिनका जवाब देने की हिम्मत न हो। तो रफन ने चंद्रशेखर की तरफ देखा। वो अपने लिए चाय की दूसरी प्याली बना रहा था। उसने मामूली खादी का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। आंखों पर मोटे काले फ्रेम की ऐनक थी। जेब में विल्सन का फाउंटेन पेन, होंठों में चार मीनार की सिगरेट जिसका धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, और राख सिगरेट के अंगारे के बाहर झूल रही थी। धुएं से बचने के लिए उसने एक आंख बंद कर रखी थी। राख झड़कर प्याली में आ गई, छन से बुझ गई। रहिए, दूसरी बना देती हूँ, जन्नत ने कहा। नहीं नहीं, चंद्रशेखर ने कहा, रफन को शेर सुनाने की जल्दी है। चंद्रशेखर के लहजे की कड़वाहट पर रफन कांप गया।